ಭದ್ರಂ ಸಭಾ ಪ್ರಶಂಸಿ
ಭದ್ರಂ ಸಭಾ ಪ್ರಶಂಸಿ
ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠಸೆ ಸತೋ ಭುವೈವ ತೇ ತಮೋ ಆಪಾಸ್ಯಂ ಜಬ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ನೆ ಇಸ್ಕೊ ಇಸ್ಮೇ ಫಿರ್ ಕುಛ ರಹಸ್ಯಮಯಿ ದಿನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಬಾತ್ ಛೋಟಿ ಸಿ ಆಸಾನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ರಹಸ್ಯಮಯಿ ಜಿಸೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಸೆ ಕುಛ ಕಿ ಪ್ರತಿ ಧ್ಯಾನ ದೇ और उसके महत्व को समझे। एक महत्वपूर्ण बात को भी अगर साधारण भाषा में सिंधित कर दिया तो व्यक्ति उसको कुछ समझता कुछ मानता कुछ ध्यान देता कुछ ध्यान नहीं देता। इस श्लोक को पढ़ने से आप लोगों देखिए और समझने का प्रयास करें स्वयं अपनी बुद्धि से। कहते हैं अंधम समा प्रवेशंति अंधकार में तमस के अंधकार में व्यक्ति प्रवेश करता है। ये अविद्या उपासना जो लोग की अविद्या की उपासना है माने जो लोग अविद्या का ही आश्रय लिए रहते हैं अविद्या में जीवन जीते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं। और फिर तथा हुए तथा मन उससे भी अधिक हुए एक मानो ते तमो वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में वे लोग पढ़ते हैं या भू विद्यायाम तथा जो विद्या में रहते हैं। सही बात तो ठीक है कि जो अविद्या में पढ़ेगा ज्ञान में पढ़ेगा वो अंधकार में पढ़ेगा अंधकार में प्रवेश करेगा ज्ञान में पढ़ करके अंधकार में जीवन लोगों को तो प्राप्त होगा। लेकिन एक बड़ी समस्या ये है कि यदि कोई व्यक्ति विद्या में रत हो जाता है रत ज्ञान उसी में लगा रहता है विद्या में लगा रहता है विद्या में अभ्यास करता रहता है विद्या में पढ़ा हुआ है उसी को सब कुछ समझे धीरे धीरे तो वो तो मानो और भी अधिक अंधकार में पड़ता है और भी अधिक अंधकार में पड़ता है। वैसे तो सीधी सी बात ये होनी चाहिए कि जो अविद्या में पड़ा वो अंधकार में पड़ता है और जो विद्या का आश्रय लेगा वो अंधकार में नहीं पड़ेगा ज्ञान के पास में आ जाएगा। विद्या ज्ञान ज्ञान है ज्ञान के द्वारा वो लोगों को प्राप्त करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा प्रकाश में लोगों को प्राप्त करेगा कहना भी नहीं चाहिए लेकिन उल्टी बात करने के लिए अब जैसे ये रहस्यमय शब्द हैं ऐसी व्याख्याएं भी अनेक प्रकार की हैं। इन व्याख्याओं को देखें अंधाचार की व्याख्या को देखें राम व्याख्या को देखें और आचार्यों की व्याख्याओं को देखें तो जैसे कि कोई गुरुकुल कथाओं के अर्थ अलग अलग करके कोई बतावे ऐसे करके इनके अर्थ भी लेकिन जो भी अर्थ लोगों ने बोले हैं बताए हैं उनका सबका सार क्या है क्या कहना चाहते हैं उसको ध्यान में दूसरी एक बात को लेकर के चलें और बातों अनेक व्याख्याओं को लेकर के सामने रखना और उनके विचार उनके ऊपर विचार करना ये बुद्धि को विक्रम उत्पन्न करेगा। ये सही है तो वो सही है ये ठीक है तो वो ठीक है इसलिए उस व्याख्याओं में अलग अलग जगह करके सब व्याख्याओं का जो सार है जिस ओर सब लोग संकेत करते हैं उस भाव को ध्यान में रखकर के इस अर्थ को समझने का प्रयास करें। पहले तो विद्या और अविद्या का अर्थ संचय क्या है। विद्या के माने है बिन धातु से बनी विद्या और बिन के माने विदित होना ज्ञान होना जो ज्ञान करावे वो विद्या बिन से ही वेद बने वेद के अंदर वेद के माने विदित होता है मैंने क्या मैंने ज्ञात होता तो विद ऐसी धातु है जिससे विदित होता है ज्ञात होता है उसी दिन से बना वेद मैंने जो हमारी ये है जो ज्ञान है वो ज्ञान ही वेद है। और विद्या क्या है उस ज्ञान का आपको प्राप्त करना विद्या है तो ज्ञान जिस ज्ञान जिसको भी प्राप्त हो गया तो विद्या प्राप्त हो गई विद्या नाम हो गया तो विद्या का तात्पर्य ज्ञान और जब आ रहा गया तो अविद्या हो गई मैं ज्ञान न होना कोई ज्ञान नहीं है तो अविद्या है ज्ञान है विद्या का अभाव न होना। कभी कभी ये भी है कि आत्मन विपरी की अर्थ भी लगता है विद्या के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होता है उससे जो विपरीत ज्ञान होता है उसका नाम अविद्या है। विज्ञान का प्रतिष्ठित ज्ञान यथार्थ ज्ञान और विपरीत ज्ञान को जाना अभिज्ञान बोलिए ज्ञान विपरीत ज्ञान यह ज्ञान अब हम अभी तक जो अध्ययन करते रहे उसमें देखेंगे कि हमारे जीवन में दो स्तर हैं। एक तो ये स्तर का जीवन है जिसमें कि अविद्या रहती है और अविद्या में जीवन जीते और हमारे जीवन का दूसरा वो रूप है जो विद्या के प्राप्त हो जाती है तो उस ज्ञान के प्रकाश में जीवन जीते। ये दो प्रकार की स्थिति है। जब तक की व्यक्ति इस सीमा को पार करके व्यस्त होकर के ज्ञान दयान और परमात्म नहीं प्राप्त करता तब इसके नीचे का जो भी जीवन है वो सब अविद्या के जीवन है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है देहाभिमान समझता कि मैं शरीर हूँ और शरीर है नहीं समझता है शरीर तो ये अविद्या है और शरीर को ही अपना रूप समझ करके यदि कोई व्यक्ति केवल शरीर के ही जीवन जीता रहता है तो उसका अविद्यामय जीवन रूप है। और इस अविद्यामय जीवन में जब अपने शारीरिक सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाने के लिए वो न्याय अन्याय कुछ नहीं देता धर्म अधर्म कुछ नहीं देता कर्तव्य कर्तव्य कुछ नहीं देता तब वो ही अविद्या के शरीर में अधर्म भी करता है और उसका परिपाप भी होता है और दुख भी होता है। ये जो अधर्म पाप और दुख है वो अविद्या की स्थिति में जब तक व्यक्ति अविद्या में है देहाभिमानी है तब तक अधर्म कर रहा है पाप कर रहा है भोग रहा है। अविद्या और अविद्या में जीवन है। अविद्या के अब अगर हम अविद्या को केवल शरीर तक लगाते हैं शरीर में विद्या है शरीर अभिमानी है तो अविद्या है और अशुद्ध अविद्या भी करता है पाप और दुख होता है तो ये भी अविद्या में जीवन का उसी का परिणाम होगा ये अविद्या है। लेकिन इसी अवस्था में व्यक्ति व्यक्ति देहाभिमानी है अधर्म पाप और दुख में जीवन जी रहा है ऐसा व्यक्ति विद्या प्राप्त करे। अब विद्या का अर्थ माने क्या है विद्या की दो प्रकार की एक विद्या तो भौतिक विद्या है और एक विद्या आत्म विद्या है। यदि कोई ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो आपको सभी समझता है अधर्म में पाप कर्मों में लगा हुआ है और वो भौतिक विद्या भी प्राप्त करे माने स्कूल कॉलेज में पढ़ पढ़ा करके एमए पुलिस की डिग्री वगैरह हो जाए तो इस भौतिक विद्या के ज्ञान का उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक बात तो ये पढ़ी तो उसका अहंकार बहुत मोटा हो जाएगा वो ही समझेगा कितना कोई पढ़ा लिखा नहीं जितना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ जितना कि ज्ञानी है उस अहंकार के कारण व्यक्ति क्या हो जाएगा अब वो कुछ सुनेगा नहीं कोई उसको कुछ भी बता दे कुछ भी सिखा दे कुछ नहीं हम सब जानते हैं सब पढ़ा इतना पढ़ाई की और इतना पढ़ने के बाद इतना बुद्धि विकास करने के बाद में वो अपने ज्ञान का प्रयोग किसमें करता है अधर्म में आश्रम में ऐसी युक्ति करता है ऐसी युक्तियां लगाता है जिसे अधिक से अधिक लोगों को करा जा सके अधिक से अधिक लोगों को करा दिया जा सके लेकिन वो किसी जान न पाए वो समझे हम खुद की आशा कार्य कर रहे हैं और उनका सत्कार धाम पर निर्णय करके सबको धारण करके हम अपने जीवन को समझ ये व्यक्ति घोर अंधकार में पहुंचे कि नहीं पहुंचे घोर अंधकार में ऐसे घोर अंधकार में पहुंच गए जहां से अब निकलने मुश्किल जो भी उसे निकालने के साधन उस अंधकार थे अब उस साधन के ऊपर काम नहीं कर सकते। वैसे ही विद्या से देहाभिमान था वैसे ही पाप कर्मों में लगे हुए थे और फिर व्यक्ति की बुद्धि का इतना विकास होकर जो होकर के बड़ा बुद्धिमान हो गया बड़ा ज्ञानमान हो गया बहुत शिक्षा प्राप्त उसने कर दी और बहुत चालाकी आ गई और अब हम उदाहरण नहीं देते उदाहरण देखें बहुत विस्तार हो जाएगा उदाहरण देखें और लोग इस प्रकार के कार्य करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या क्या किस प्रकार से समाज को करा धोखा दिया, संवेदना की, कितना अपने आप को समझा के मैंने, कितना लोग चक्कर के, कितना महान लगन किया, संसार के सब लोग दूर हैं, ये तो नहीं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ऐसे समझने वाले इसके बाद ही संसार में आते रहते हैं, ये सब लोग घोर अंधकार में पड़ जाते हैं और उनके सुधार को कोई साधन कर दिया जाता है, कोई शिक्षा से भी कोई प्रकार नहीं करते। इस अंधकार को सुनने का निरूपण श्रुति इस श्लोक में करती है, इससे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ऐसे अंधकार में न पड़े अविद्या और फिर अविद्या के उसके साथ साथ अविद्या के ऊपर विद्या का आवरण चढ़ा करके उस अविद्या को और शक्तिशाली बना देना, ये जीवन के विनाश का लक्षण है। अधम ये अविद्या और विद्या दोनों का ही कुछ रूप ही है, दृढ़ रूप ही है, दोनों का भेद नहीं है। ये लोग जो है उन लोगों की निंदा करने के लिए अंगम दमा कह करके उन लोगों की निंदा करते हैं और सावधान भी करते हैं, फिर तो इस प्रकार का आचरण होगा। अविद्या और अविद्या में जीवन है, अविद्या है अब अगर हम अविद्या को केवल शरीर कर लगाते हैं, शरीर में विद्या है, शरीर अभिमानी है तो अविद्या है, और अशुभ कर्म इत्यादि करता है, पाप और दुख भोगता है, तो ये भी अविद्या में जीवन का उसी का परिणाम होता है, ये अविद्या। लेकिन इसी अवस्था में व्यक्ति जबकि देहाभिमानी है, अधर्म पाप और दुख में जीवन जी रहा है, ऐसा व्यक्ति विद्या प्राप्त कर ले। अब विद्या प्राप्त के माने क्या है? विद्या में दो प्रकार की, एक विद्या तो भौतिक विद्या है और एक विद्या। यदि कोई ऐसा अज्ञानी व्यक्ति जो आपको सभी समझता है अधर्म में पाप कर्मों में लगा हुआ है और वो भौतिक विद्या भी प्राप्त कर ले, माने स्कूल कॉलेज में पढ़ पढ़ा करके डिग्री वगैरह भी हो जाए, तो इस भौतिक विद्या के ज्ञान का उसके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बात तो ये पड़ेगी कि उसका अंगा बहुत मोटा हो जाएगा, वो ही समझेगा कितना कोई पढ़ा लिखा नहीं जितना कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना कि ज्ञानी मैं। उस अहंकार के कारण व्यक्ति गहरा हो जाएगा, अब वो कुछ सुनेगा नहीं, कोई उसको कुछ भी बता दे, कुछ भी सिखावे, कुछ हम सब जानते सब पढ़ा इतना पढ़ाई की, और इतना पढ़ने के बाद इतना बुद्धि विकास करने के बाद में वो अपने ज्ञान का प्रयोग किसमें करता है? अधर्म में, आश्रम में, ऐसी युक्ति करता है, ऐसी युक्तियां लगाता है जिससे अधिक से अधिक लोगों को ठगा जा सके, अधिक से अधिक लोगों को ठगा दिया जा सके, लेकिन वो व्यक्ति जान न पाए, वो समझे हम कुछ के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनका सबका धना पर इत्यादि करके सबको धारण करके हम अपने जीवन को समझ। ये व्यक्ति घोर अंधकार में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? घोर अंधकार के माने ऐसे घोर अंधकार में पहुंच गए जहां से अब निकल नहीं मुश्किल, जो भी उसे निकालने के जो साधन अंधकार थे अब वो साधन उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। वैसे ही विज्ञान से देहाभिमान था, वैसे ही पाप कर्मों में लगे हुए थे, और फिर व्यक्ति की बुद्धि का इतना विकास होकर जो होकर के बड़ा बुद्धिमान हो गया, बड़ा ज्ञानवान हो गया, बहुत शिक्षा प्राप्त उसने कर दी और बहुत चालाकी आ गई, और अब हम उदाहरण नहीं देते, उदाहरण देखे तो बहुत विश्वास हो जाएगा, संसार में देखे बहुत लोग इस प्रकार से कार्य करके अपनी बुद्धि का प्रयोग करके क्या क्या किस प्रकार से समाज को करा धोखा दिया, प्रबंधना की, कितना अपने आप को समझा के मैंने, कितना लोग चक्कर के, कितना महान लगन किया, संसार के सब लोग दूर हैं, ये तो नहीं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ऐसे समझने वाले इसके बाद ही संसार में आते रहते हैं, ये सब लोग घोर अंधकार में पड़ जाते हैं और उनके सुधार को कोई साधन नहीं रह जाता, कोई शिक्षा से भी कोई प्रकार नहीं करते। इस अंधकार को सुनने का निरूपण श्रुति इस श्लोक में करती है, इससे व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, ऐसे अंधकार में न पड़े। अविद्या और फिर अविद्या के उसके साथ साथ अविद्या के ऊपर विद्या का आवरण चढ़ा करके उस अविद्या को और शक्तिशाली बना देना, ये जीवन के विनाश का लक्षण है। अधम प्रवृत्ति के कार्य की ये एक अविद्या और विद्या दोनों का ही कुछ रूपी है, छठ रूपी है, दोनों का अभिनंदन है। एक लोग जो है उन लोगों की निंदा करने के लिए अंधम दमा कह करके उन लोगों की निंदा करते हैं और सावधान भी करते हैं कि जो इस प्रकार का आचरण होगा, इस प्रकार का व्यवहार होगा तो जो है लाल मत हो जाए।
हरे कृष्ण हरे मुरारे।